अध्याय सात, शैली विज्ञान, शैली और रीति। शैली विज्ञान मूलतः शैली का विज्ञान है, जिसमें शैली का वैज्ञानिक ढंग से अथवा व्यवस्थित रूप में अध्ययन किया जाता है। यह शैली शब्द अंग्रेजी के स्टाइल शब्द का अनुवाद है। कुछ विद्वानों ने अंग्रेजी के स्टाइल शब्द के लिए रीति कहना उपयुक्त माना है, परंतु रीति शब्द रचना विधि या गमन विधि का वाचक होने के कारण स्टाइल के संपूर्ण अर्थ का द्योतक नहीं है। स्टाइल शब्द केवल रचना विधि या गमन विधि का ही द्योतक नहीं है, अपितु इसमें वक्ता की वक्तृत्व पद्धति, लेखक की अभिव्यंजना पद्धति, उसके वैयक्तिक विशिष्टता, विषय विवेचन की प्रविधि, व्यक्ति के आचार व्यवहार का ढंग, बोलने या बातचीत करने का लहजा, किसी कवि या लेखक के मस्तिष्क में उठने वाले भाव या विचारों के प्रतिरूप आदि का भी समावेश रहता है। अतः स्टाइल को रीति कहना कदापि संभव नहीं है। इसी कारण पंडित रामधीन मिश्र ने स्पष्ट लिखा है कि शैली के लिए रीति का प्रयोग होता है, पर वह यथार्थ नहीं। शैली के लिए स्टाइल शब्द का प्रयोग उपयुक्त माना जाता है, उसके भाषा शैली भी कहते हैं। भाषा शैली भावानुरूप होनी चाहिए। भावनाएँ अपने आकार को प्रस्तुत करने के लिए काव्यांगों, गुण, रीति, अलंकार, वक्रोक्ति आदि को अपनाती है। इसमें रीति व भाषा शैली लेखक के भावनात्मक शरीर की पहनाई हुई पोशाक नहीं है, बल्कि उसे उसकी चमड़ी समझनी चाहिए। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि कलाकार का व्यक्तित्व भाषा शैली में फूट पड़ता है। पंडित रामधीन मिश्र के इस कथन से दो तथ्य हमारे सामने उपस्थित होते हैं। एक तो यह कि रीति शब्द स्टाइल के उपयुक्त नहीं है। दूसरा यह कि रीति शब्द इतना व्यापक नहीं है जितना कि शैली शब्द, क्योंकि रीति तो एक विशिष्ट पद रचना को ही कहते हैं और वक्रोक्ति, गुण, अलंकार आदि उससे सर्वथा भिन्न है, जबकि शैली के अंतर्गत केवल रीति आती है, अभी तो गुण, अलंकार, वक्रोक्ति, वृत्ति, प्रवृत्ति, दोष, ध्वनि आदि अभिव्यंजना के सभी तत्व आ जाते हैं। इतना ही नहीं, शैली शब्द इतना व्यापक है कि इसके अंतर्गत आज प्रतीक, बिंब, छंद, लय, स्वरमैत्री, पदमैत्री, नादात्मकता आदि अभिव्यंजना की नूतन नूतन पद्धतियों का भी समावेश हो जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने ठीक ही लिखा है, रीति शब्द शास्त्रारूढ़ बनकर रह गया है और उस पुराने सिक्के को आज चालू करना कठिन है, जबकि स्टाइल के संपूर्ण अर्थ का वहन करता हुआ शैली शब्द हिंदी आलोचना का टकसाली सिक्का है। शब्दों का अर्थ, विशेषकर धारणामूलक शब्दों का अर्थ सतत विकासमान रहता है। जिस प्रकार अंग्रेजी में स्टाइल शब्द रचना विधि के अनेक सीमांतों का स्पर्श करता हुआ अपने आधार अर्थ को अक्षुण बनाए हुए है, इसी प्रकार शैली की अर्थ व्याप्ति को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। अतः उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अंग्रेजी शब्द स्टाइल के लिए रीति शब्द का ना उपयुक्त एवं अर्थबोधक नहीं है जितना कि शैली शब्द है। इस शैली शब्द में जितनी व्यापकता है उतनी रीति शब्द में नहीं है। रीति शब्द काव्यशास्त्र की एक विशिष्ट पद्धति का द्योतक है, वह विशिष्ट पद रचना के लिए रूढ़ हो गया है, उसकी अपनी सीमा है और वह स्टाइल के आंतरिक भाव को स्पर्श नहीं कर सकता। इसके ठीक विपरीत शैली शब्द न तो पुरातन पद्धति का परिचायक है, न काव्यशास्त्र की किसी रूढ़ी का द्योतक है, न यह केवल पद रचना तक सीमित है और न किसी वस्तुनिष्ठ अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, अपितु यह शब्द अभिव्यंजना की विविध पद्धतियों को स्पर्श करता है। यह रचना विधि के अनेक सीमांतों तक व्याप्त है। यह रचना प्रविधि के सभी तत्वों को अपने अंतर्गत समाहित किए हुए है और यह कृति के अतिरिक्त कृतिकार के व्यक्तित्व, व्यवहार, पद्धति, आचार विचार, रीति नीति, वैयक्तिक वैशिष्ट आदि का भी द्योतक है। शैली का स्वरूप। शैली के स्वरूप के बारे में संस्कृत काव्यशास्त्र मौन है। संस्कृत काव्यशास्त्रों में शैली के विभिन्न उपादानों, भाषा, अलंकार, शब्द शक्ति, वक्रोक्ति, रीति, छंद, गुण, दोष आदि का विवेचन तो पर्याप्त मात्रा में मिलता है, परंतु शैली की स्वतंत्र रूप में कोई व्याख्या नहीं की गई है। शैली के बारे में पाश्चात्य विद्वानों ने ही अत्यधिक मात्रा में लिखा है और शैली की विविध रूप में व्याख्याएं एवं परिभाषाएं दी है। पाश्चात्य विद्वानों में से प्लेटो का कथन है कि जब विचार को रूप दिया जाता है तभी शैली का जन्म होता है। डॉक्टर जॉनसन का विचार है कि हर व्यक्ति एक विशिष्ट शैली को अपनाता है। शोपेनहावर का मत है कि शैली मस्तिष्क की बाह्य कृति को कहते हैं। गेटे का भी यही विचार है कि किसी भी कृतिकार की शैली उसके मस्तिष्क की विश्वसनीय प्रतिलिपि होती है। चेस्टरफील्ड का कथन है कि विचारों के परिधान को शैली कहते हैं। न्यूमैन का मत है कि भाषा के अंतर्गत सोचना ही शैली कहलाता है। एलिस का कथन है कि स्वयं विचार ही शैली है। ऐसे ही बफो की भी मान्यता है कि विचार क्रम तथा विचार गति को ही शैली कहते हैं। इसी प्रकार प्राउस्ट का मत है कि शैली एक तकनीक का प्रश्न नहीं अपितु यह एक दृष्टि का प्रश्न है। स्लेद का विचार है कि शैली भाषा और विचार दोनों में ही विद्यमान रहती है। शेरन का कथन है कि किसी भी कलात्मक अभिव्यक्ति में व्यक्तित्व की विद्यमानता को शैली कहते हैं। इनके अतिरिक्त मरी का मत है कि भाषा के उस वैशिष्ट को शैली कहते हैं जो भाव एवं विचारों को उचित ढंग से प्रेषित करता है। इस प्रकार पाश्चात्य विद्वानों ने शैली की विविध प्रकार से व्याख्या करते हुए उसे लेखक के भाव एवं विचारों का संप्रेषण करने वाली एक ऐसी विलक्षण शक्ति कहा है जो लेखकों के भावों में, विचारों में, अभिव्यंजना में, मस्तिष्क में एवं हृदय में बराबर विद्यमान रहती है और भाषा या वाणी के माध्यम से व्यक्त होती है। इसमें सदैव व्यक्तिगत वैशिष्ट्य रहता है। यह विषय प्रतिपादन की एक प्रविधि है और इसे किसी भी रचनाकार की रचना पद्धति या अभिव्यंजना प्रणाली कह सकते हैं। भारतीय आधुनिक विद्वानों में से हिंदी के सुप्रसिद्ध आलोचक डॉ. श्याम सुंदर दास का मत है कि किसी कवि या लेखक की शब्द योजना, वाक्यांशों का प्रयोग, वाक्यों की बनावट और उनकी ध्वनि आदि का नाम ही शैली है। इतना ही नहीं, आपने शैली विचार का परिधान है इस कथन की आलोचना करते हुए शैली के स्वरूप को इस तरह स्पष्ट किया है। एक विद्वान के मत से शैली विचारों का परिधान है, पर यह ठीक नहीं, क्योंकि परिधान का शरीर से अलग और निज का अस्तित्व होता है। उसकी उस व्यक्ति से भिन्न स्थिति होती है। जैसे मनुष्य से उसके विचार अलग नहीं हो सकते, वैसे ही उन विचारों को व्यंजित करने का ढंग भी उनसे अलग नहीं हो सकता। अतएव शैली को विचारों का परिधान न कहकर उनका बाह्य और प्रत्यक्ष रूप कहना कुछ संगत होगा, अथवा उसे भाषा का व्यक्तिगत प्रयोग कहना भी ठीक होगा। इसके अतिरिक्त डॉ. श्याम सुंदर दास ने शैली का विवेचन करने के उपरांत पुनः इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है कि अतएव यह स्पष्ट हुआ कि भाव, विचार और कल्पना तो हम में नैसर्गिक अवस्था में वर्तमान रहती है और साथ ही उन्हें व्यक्त करने की स्वाभाविक शक्ति भी हम में रहती है। अब यदि इस शक्ति को बढ़ाकर संस्कृत और उन्नत करके हम उसका उपयोग कर सकें तो उन विचारों, भावों और कल्पनाओं के द्वारा हम संसार के ज्ञान भंडार की वृद्धि करके उसका बहुत कुछ उपकार कर सकते हैं। इसी को साहित्य में शैली कहते हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध समालोचक डॉ. गुलाब राय ने भी शैली की समीक्षा करते हुए उसके स्वरूप को इस प्रकार समझाया है। शैली शब्द के दो तीन अर्थ हैं। एक तो वह अर्थ है जिसमें कि यह कहा जाता है कि शैली ही मनुष्य है, यानी स्टाइल इज द मैन। यहाँ इस अर्थ में शैली अभिव्यक्ति का वैयक्तिक प्रकार है। दूसरे अर्थ में शैली अभिव्यक्ति के सामान्य प्रकारों को कहते हैं। भारतीय समीक्षा शास्त्र की रीतियाँ इसी अर्थ में शैलियाँ हैं। तीसरे अर्थ में शैली वर्णन की उत्तमता को कहते हैं। जब हम किसी रचना के संबंध में कहते हैं यह है शैली, अथवा किसी की विगरणहता करते हुए कहते हैं यह क्या शैली है, या वे क्या जाने कि शैली क्या है, तब हम उसको इसी अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। शैली में न तो इतना निजीपन हो कि वह सनक की हद तक पहुंच जाए और न इतनी सामान्यता हो कि वह नीरस और निर्जीव हो जाए। शैली अभिव्यक्ति के उन गुणों को कहते हैं जिन्हें लेखक या कवि अपने मन के प्रभाव को समान रूप से दूसरों तक पहुंचाने के लिए अपनाता है। पंडित रामधीन मिश्र ने शैली की परिभाषा करते हुए लिखा है कि किसी वर्णनीय विषय के स्वरूप को खड़ा करने के लिए उपयुक्त शब्दों का चुनाव और उनकी योजना को शैली कहते हैं। आपने शैली के चार गुण बताए हैं, ओजस्विता, सजीवता, प्रौणता और प्रभावशीलता। इसके साथ ही आपने सुंदर शैली के तीन उपादान बताए हैं। पहला शब्दों या सुसंचय और सुप्रयोग, दूसरा वाक्य विन्यास और तीसरा भाव प्रकाशन का ढंग। इसके अतिरिक्त आपका विचार है कि रुचि भिन्नता, व्यक्ति वैशिष्ट और प्रकाशन भंग की विविधता से शैलियाँ भी विविध होती हैं। जैसे पहला व्यवहारिक या स्वाभाविक शैली, इसमें सरल सुबोध और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग होता है। दूसरा ललित शैली, इसकी भाषा सुंदर मधुर शब्दों वाली तथा अलंकृत और चमत्कारिक होती है। तीसरा प्रौढ़ या उत्कृष्ट शैली, इसकी भाषा प्रौढ़ और उच्च विचारों के प्रकाशन योग्य होती है। चौथा गद्य काव्य शैली, सरस सुंदर और काव्य गुण वाली रचना इसके अंतर्गत आती है। इसका एक रूप प्रलापक शैली के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें लेखक भावावेश में आकर किसी विषय पर मर्मस्पर्शी भाषा में अपने आंतरिक उद्गारों और अनुभूतियों को व्यक्त करता है। हिंदी के आधुनिक विद्वान डॉक्टर नगेंद्र ने शैली का स्वरूप विवेचन करते हुए उसके दो भागों में विभाजित किया है। साहित्य एवं साहित्य शास्त्र की दृष्टि से शैली के तीन अर्थ होते हैं। पहला शैली कृतिकार के व्यक्तित्व का वैशिष्ट या सहज गुण है। दूसरा शैली विषय प्रतिपादन की प्रविधि है तथा तीसरा शैली कलात्मक अभिव्यक्ति है और इस प्रकार वह साहित्य की चरम उपलब्धि है। इसके उपरांत आपने भाषा वैज्ञानिकों के मतानुसार शैली के स्वरूप की विवेचना करते हुए शैली के चार अर्थ बताए हैं। पहला व्यक्ति सापेक्ष भाषिक चयन को शैली कहते हैं। दूसरा प्रासंगिक मानक भाषा से विपथन को शैली कहते हैं। तीसरा प्रभावी अभिव्यंजना शैली कहलाती है और चौथा असामान्य यानी अतर्क भाषिक प्रयोग को शैली कहते हैं। इसके उपरांत आपने शैली की व्यक्ति पर अत्यंत गंभीरता के साथ विचार करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला है कि साहित्य के संदर्भ में शैली यदि एक विशेष भाषिक प्रयोग विधि अथवा कथन भंगिमा है तो उसकी व्याप्ति भाषा तक ही हो सकती है। जहाँ भाषेतर तत्वों का विनियोग है वहाँ तक शैली का क्षेत्र विस्तार नहीं है। इस प्रकार विभिन्न पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों के मतों का विवेचन करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि शैली का संबंध किसी वक्ता, लेखक या कवि की अभिव्यंजना पद्धति से होता है। प्रत्येक वक्ता, लेखक या कवि की अभिव्यंजना भाषा के माध्यम से होती है। उस भाषा में प्रयोक्ता के व्यक्तित्व की छाप रहती है तथा वह अभिव्यंजना किसी न किसी रूप में भी संबद्ध होती है। इतना ही नहीं, प्रत्येक वक्ता, लेखक या कवि जब किसी विषय की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग करता है तब वह अपनी रुचि के अनुकूल शब्दों का चयन करता है। कतिपय प्रचलित एवं प्रसिद्ध अभिव्यंजना पद्धति से कुछ हटकर चलने का प्रयास करता है। प्राचीन एवं रूढ़ प्रयोगों को छोड़कर नूतन शब्द प्रयोग करता है। विभिन्न पुरातन उपमानों को छोड़कर नूतन उपमानों को अपनाता हुआ अपनी अप्रस्तुत योजना में भी नूतनता लाने का प्रयास करता है तथा अन्य अभिव्यक्ति के सहज सुलभ उपलब्ध उपकरणों को अपनाता हुआ भी उनमें कुछ न कुछ नवीनता, चारुता एवं आकर्षण उत्पन्न करने का प्रयास करता है। इसी कारण उसकी अभिव्यंजना पद्धति कुछ पृथक सी दिखाई देने लगती है और उसकी अभिव्यक्ति में उसकी वैयक्तिक विशेषता भी आ जाती है। अतएव संक्षेप में शैली का स्वरूप इन शब्दों में निर्धारित किया जा सकता है। भाषागत अभिव्यक्ति की विशिष्ट एवं वैयक्तिक पद्धति को शैली कहते हैं। शैली विज्ञान का स्वरूप। साधारणतया जहाँ शैली अथवा भाषागत अभिव्यक्ति की विशिष्ट एवं वैयक्तिक पद्धति का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे शैली विज्ञान कहते हैं। परंतु शैली विज्ञान के स्वरूप की विवेचना करते हुए विविध विद्वानों ने विविध ढंग से उनकी व्याख्या की है। यह निर्विवाद सत्य है कि शैली विज्ञान भारतीय समीक्षकों के लिए नई चीज है। प्रत्येक नई चीज को समझने और उसके स्वरूप का ठीक ठीक विवेचन करने में समय लगता है। इसी कारण अभी तक कोई भारतीय विद्वान शैली विज्ञान के स्वरूप की कोई सर्वमान्य एवं सर्वग्राह्य व्याख्या नहीं कर सका है। हाँ, इतना अवश्य है कि पाश्चात्य विद्वानों ने शैली विज्ञान पर अनेकानेक ग्रंथ लिखे हैं और उन्होंने इसके स्वरूप को भी अत्यंत विस्तारपूर्वक समझाने का प्रयास किया है। अभी तक सभी भारतीय विद्वान उन्हें पाश्चात्य विद्वानों का अनुगमन कर रहे हैं और उन्हीं के आधार पर शैली विज्ञान के स्वरूप को समझने एवं समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि कुछ विद्वान शैली विज्ञान को साहित्य शास्त्र और भाषा विज्ञान दोनों के क्षेत्र की वस्तु मानते हैं और कुछ विद्वान इसे केवल प्रायोगिक भाषा विज्ञान का अंग मानते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ विद्वान शैली विज्ञान को पूर्णतः स्वतंत्र विषय के रूप में अंगीकार करते हैं और यह मानते हैं कि जिस तरह भाषा विज्ञान के दो रूप होते हैं, सैद्धांतिक भाषा विज्ञान और प्रायोगिक भाषा विज्ञान, उसी तरह शैली विज्ञान के भी दो रूप होते हैं, सैद्धांतिक शैली विज्ञान और प्रायोगिक शैली विज्ञान। सैद्धांतिक शैली विज्ञान में केवल शैली के सिद्धांतों की वैज्ञानिक व्याख्या होती है और प्रायोगिक शैली विज्ञान में शैली विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर किसी ग्रंथ या ग्रंथकार की शैली का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं विवेचन किया जाता है। पाश्चात्य देशों में शैली के प्रवर्तकों के दो वर्ग मिलते हैं। पहला वर्ग चार्ल्स बेली, रोमन याकोबसन, प्रोफेसर नाय आदि का है, जिनकी मान्यता यह है कि शैली विज्ञान भाषा विज्ञान का ही एक अंग है और इसके अंतर्गत शैली मात्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, अर्थात इसमें शैली के व्यापक रूप को अपनाकर प्राकृत भाषा का अध्ययन किया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि इसमें केवल साहित्यिक एवं विशिष्ट भाषा शैली को आधार बनाकर कलात्मक शैली का अनुशीलन किया जाता है, अभी तो बोलचाल में प्रयुक्त व्यावहारिक एवं प्रायोगिक सभी प्रकार की भाषा शैली का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए शैली विज्ञान में न तो शुद्ध तार्किक शैली को अपनाया जाता है, न कलात्मक शैली की व्याख्या की जाती है और न साहित्यिक शैली का अनुशीलन किया जाता है, अपितु इसका झुकाव शैली के व्यापक अध्ययन की ओर रहता है। इसके ठीक विपरीत दूसरा वर्ग क्रेसो, स्पिट्जर, उलमान, रेनेवलैक, एक्विस्ट आदि का है, जो शैली विज्ञान को साहित्यिक शैली मात्र का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला मानते हैं। इस वर्ग के विद्वानों की मान्यता है कि एक भाषा तो वह होती है जिसका प्रयोग सर्वसाधारण में होता है, जो बोलचाल के काम में आती है तथा जिसे सामान्य भाषा कहते हैं, परंतु इस सर्वसाधारण में प्रचलित सामान्य भाषा के ठीक विपरीत दूसरी प्रकार की भाषा वह होती है जिसे कवि, उपन्यासकार, निबंधकार आदि साहित्यकार अपनाते हैं, जिसमें सर्वसाधारण की बोलचाल से भिन्न कुछ विशेषता होती है, कुछ विलक्षणता होती है, कुछ चमत्कार होता है, अथवा जिसमें कुछ उक्ति वैचित्र होता है, अतः इसे साहित्यिक भाषा कहा जाता है। इस वर्ग के विद्वानों की मान्यता है कि शैली विज्ञान के अंतर्गत इसी साहित्य भाषा शैली का अनुशीलन किया जाता है, क्योंकि इसमें भाषिक चयन अधिक स्वैच्छिक एवं सुविचारित होता है। इसमें भाषा श्रेष्ठों की प्रधानता रहती है और इसके अंतर्गत ऐसे शब्दों, पदों, वाक्यों आदि को अधिक सतर्कता एवं मार्मिकता के साथ अपनाया जाता है, जिनका प्रयोग साहित्य में सौंदर्य सृष्टि के लिए होता है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शैली विज्ञान के अंतर्गत एक ओर तो सर्वसाधारण में प्रचलित सामान्य और साहित्यिक भाषा की प्रकृति और संरचना को समझने के लिए उसका शैलीगत अनुशीलन किया जाता है, जो पूर्णतया भाषा विज्ञान की सीमा में आता है, और दूसरी ओर केवल साहित्यिक भाषा का शैलीगत अनुशीलन किया जाता है जिसका संबंध पूर्णतया साहित्य शास्त्र से है। उक्त मान्यता को ही आधार बनाकर डॉ. रविंद्रनाथ श्रीवास्तव ने भी लिखा है कि भाषा के साथ अविच्छिन्न संबंध बनाए रखने के कारण अध्ययन विश्लेषण के हर स्तर पर शैली विज्ञान उस वैज्ञानिक सिद्धांत प्रणाली की मांग करता है जिसमें साहित्य के संदर्भ में भाषा की प्रकृति एवं संरचना को स्पष्ट करने की क्षमता हो। स्पष्ट है भाषा की प्रकृति एवं संरचना को समझाने का अपना विज्ञान है, जिसे आज हम भाषा विज्ञान के नाम से जानते हैं। अतः शैली विज्ञान का निकटतम संबंध एक ओर प्रतिपाद्य विषय के रूप में साहित्यिक सिद्धांत के साथ सिद्ध है, तो दूसरी ओर कार्य प्रणाली के रूप में भाषा वैज्ञानिक टेक्निक के साथ भी। डॉक्टर श्रीवास्तव की उक्त धारणा से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि शैली विज्ञान एक ओर तो साहित्य शास्त्र की सीमा का स्पर्श करता है और दूसरी ओर भाषा विज्ञान से भी संबंध रहता है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी शैली विज्ञान का विवेचन करने के उपरांत कुछ ऐसा ही निष्कर्ष निकाला है और लिखा है कि शैली विज्ञान की सही परिभाषा साहित्य के भाषिक विधान या रूपात्मक अध्ययन है। इसी अर्थ में वह सैद्धांतिक स्तर पर भाषा विज्ञान और साहित्य शास्त्र का और व्यवहारिक स्तर पर भाषा विज्ञान और व्यवहारिक साहित्य समीक्षा का संयोजक सेतु है। इस प्रकार पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों के मतों का निरीक्षण परीक्षण करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शैली विज्ञान एक ओर तो भाषा शैली का अध्ययन साहित्य शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर करता है, जिसमें रस, अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि, रीति, वृत्ति, प्रवृत्ति, शब्द शक्ति, औचित्य, बिंब प्रतीक आदि आते हैं। दूसरी ओर शैली विज्ञान के अंतर्गत भाषा शैली का अध्ययन भाषा विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, जिसमें भाषा की प्रकृति और संरचना के अनुशीलन को महत्व दिया जाता है। शैली विज्ञान और रीति विज्ञान। जिस प्रकार आज स्टाइल के लिए शैली शब्द प्रचलित है, उसी प्रकार स्टाइलिस्टिक्स के लिए शैली विज्ञान शब्द का प्रयोग हो सकता है। परंतु डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने इसके लिए रीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। आपने इस संदर्भ में अधिक गहराई के साथ विचार करते हुए स्टाइलिस्टिक्स के लिए रीति विज्ञान कहना समीचीन ठहराया है। आपके तर्क का मुख्य आधार यह है कि शैली शब्द का प्रयोग भारतीय वाङ्मय में साहित्येतर विधाओं के संदर्भ में हुआ है, जबकि रीति शब्द का प्रयोग विशुद्ध रूप से सामान्य भाषा के विशिष्ट गुणों के आधार पर इसके पदों, शब्दों, शब्दांशों आदि के वर्गीकरण एवं विश्लेषण की पद्धति के लिए हुआ है। अतः इस दृष्टि से स्टाइल के लिए शैली शब्द उतना उपयुक्त नहीं है जितना कि रीति, क्योंकि रीति शब्द का प्रयोग भारतीय समीक्षा साहित्य में भी प्रचुर मात्रा में हुआ है। उक्त विवाद पर अपना मत प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि रीति विज्ञान शब्द के प्रति आग्रह संस्कृत का विश्वास की परंपरा के साथ प्रतिबद्ध है, परंतु इसके विरुद्ध लोक व्यवहार के अमोघ अर्थ का प्रयोग किया जाता है। रीति शब्द सत्तारूढ़ शास्त्रारूढ़ बनकर रह गया है और उस पुराने सिक्के को आज चालू करना कठिन है, जबकि स्टाइल के संपूर्ण अर्थ का वहन करता हुआ शैली शब्द हिंदी आलोचना का टकसाली सिक्का है। शब्दों का अर्थ, विशेषकर धारणामूलक शब्दों का अर्थ, सतत विकासमान रहता है। इस प्रकार अंग्रेजी में स्टाइल शब्द रचना विधि के अनेक सीमांतों का स्पर्श करता हुआ अपने आधार अर्थ को अक्षुण बनाए हुए है। इसी प्रकार शैली की अर्थ प्राप्ति को भी स्वीकार कर लेना चाहिए और उसके आधार पर शैली विज्ञान को ही स्टाइलिस्टिक्स के समान मानक पर्याय के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, अन्यथा इस नवीन शास्त्र विधा के नामकरण के मुहूर्त से ही विवाद आरंभ हो जाएगा। अतः वह निर्वदा सत्य है कि रीति शब्द एक विशिष्ट संप्रदाय की ओर इंगित करता है, जिसकी सीमा पद रचना तक ही है, क्योंकि आचार्य वामन ने रीति की परिभाषा करते हुए विशिष्ट पद रचना रीति ही कहा है। यदि कोई पद रचना सामान्य है तो वह भी रीति की परिधि से बाहर हो जाएगी, क्योंकि केवल विशिष्ट पद रचना ही रीति की परिधि में आती है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी का स्टाइल शब्द अभिव्यक्ति की अधिक व्यापक एवं विस्तृत परिधि का द्योतक है। ऐसी स्थिति में स्टाइल को रीति मानकर स्टाइलिस्टिक्स को रीति विज्ञान का कहना समीचीन नहीं है। अब तो अधिकांश विद्वान स्टाइल के लिए शैली शब्द का ही प्रयोग करते हैं, अतः स्टाइलिस्टिक्स के लिए फिर शैली विज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई शब्द उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। शैली विज्ञान के अध्ययन की दिशाएं। यह तो स्पष्ट है कि एक ओर तो शैली विज्ञान का संबंध साहित्यिक समीक्षा के सिद्धांतों से है और दूसरी ओर इसका संबंध भाषा की प्रकृति एवं संरचना के आधार पर भाषा के वैज्ञानिक अनुशीलन से है। साहित्यिक समीक्षा के सिद्धांतों का मूलाधार साहित्य शास्त्र है और भाषा की प्रकृति एवं संरचना के आधार पर भाषा के वैज्ञानिक अनुशीलन का मूलाधार भाषा विज्ञान है। अतः शैली विज्ञान के अध्ययन की दो दिशाएं स्पष्ट दिखाई देती है। क, साहित्य शास्त्र के आधार पर शैली वैज्ञानिक अध्ययन। ख, भाषा विज्ञान के आधार पर शैली वैज्ञानिक अध्ययन। क, साहित्य शास्त्र के आधार पर। यदि साहित्य शास्त्र के आधार पर किसी कवि, लेखक या कृति का शैली वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है तो उसमें रस, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति, ध्वनि, गुण, दोष, वृत्ति, प्रवृत्ति, शब्द शक्ति, औचित्य, बिंब, प्रतीक, छंद आदि को आधार बनाकर यह चेष्टा की जाएगी कि अमुक लेखक या कवि के अभिव्यक्ति में साहित्य शास्त्र के सिद्धांतों का अनुसरण उचित एवं व्यवस्थित रूप में कहाँ तक किया गया है, अथवा अमुक कृति या रचना की शैली में साहित्य शास्त्र के नियमों का पालन व्यवस्थित ढंग से कहाँ तक हुआ है। ऐसा शैली वैज्ञानिक अध्ययन पूर्णतया साहित्यिक आलोचना की परिधि में आएगा, साहित्यिक समीक्षा के सिद्धांतों पर आधारित होगा और साहित्य समीक्षा के सैद्धांतिक अथवा व्यावहारिक पक्ष को अपनाकर ही किया जाएगा। अतएव ऐसे अध्ययन को भाषा विज्ञान के क्षेत्र से सर्वथा दूर साहित्य शास्त्र के क्षेत्र की वस्तु माना जाएगा। ख, भाषा विज्ञान के आधार पर। जब हम किसी कवि या लेखक अथवा किसी कृति या रचना के शैली वैज्ञानिक अध्ययन भाषा विज्ञान के आधार पर करते हैं, तब हम उस कवि या लेखक अथवा उस कृति या रचना में प्रयुक्त भाषा की प्रकृति और संरचना के तत्वों का वैज्ञानिक विश्लेषण एवं विवेचन करते हैं। प्रकृति और संरचना के आधार पर भाषा के पांच तत्व माने गए हैं, ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य और अर्थ। अतः भाषा विज्ञान के आधार पर जब शैली वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है तब यह देखा जाता है कि किसी लेखक या कवि की भाषा में कहाँ कहाँ ध्वनि विचलन है, कैसा ध्वनि चयन है, कैसा ध्वनियों का समानांतर प्रयोग किया गया है, उसकी भाषा में कहाँ कहाँ शब्द विचलन है, कैसा शब्द चयन है, कैसे कैसे शब्दों का समानांतर प्रयोग किया गया है, उसकी भाषा में कहाँ कहाँ रूप विचलन है, कैसा रूप चयन है, कैसे रूपों का समानांतर प्रयोग किया गया है, उसकी भाषा में कहाँ कहाँ वाक्य विचलन है, कैसा वाक्य चयन है, कैसे वाक्यों का समानांतर प्रयोग किया गया है, उसकी भाषा में कहाँ कहाँ अर्थ का विचलन है, कैसा अर्थ चयन है और कहाँ कहाँ अर्थ का समानांतर प्रयोग किया गया है। हम शब्दों के अंतर्गत शब्दालंकारों और अर्थ के अंतर्गत अर्थालंकारों का भी अनुशीलन कर सकते हैं। इसी प्रकार वाक्यों के अंतर्गत मुहावरे एवं लोकोक्तियों के विचलन आदि का अध्ययन भी किया जा सकता है। इस प्रकार भाषा विज्ञान के आधार पर किसी भी कृति या कृतिकार की भाषा का शैली वैज्ञानिक अनुशीलन अत्यंत गहराई के साथ किया जा सकता है। शैली विज्ञान की शाखाएं। शैली विज्ञान के आधार पर भाषा विज्ञान के आधार पर भाषा की 5 इकाइयां मानी जाती हैं, ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य और अर्थ। इन्हीं इकाइयों के आधार पर शैली विज्ञान की भी 5 शाखाएं मानी जाती हैं। ध्वनि शैली विज्ञान यानी फोनोस्टाइलिस्टिक्स, ख शब्द शैली विज्ञान यानी वर्डोस्टाइलिस्टिक्स, ग रूप शैली विज्ञान यानी मार्फोस्टाइलिस्टिक्स, घ वाक्य शैली विज्ञान यानी सिंटेक्स्टोस्टाइलिस्टिक्स, अंग अर्थ शैली विज्ञान यानी सेमिनेटिको स्टाइलिस्टिक्स, क ध्वनि शैली विज्ञान। इसके अंतर्गत ध्वनि विचलन, ध्वनि चयन, ध्वनि प्रभाव, ध्वनि समानांतरता, लय, छंद व्यवस्था आदि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ख शब्द शैली विज्ञान। इसके अंतर्गत शब्द विचलन, शब्द चयन, शब्द समानांतरता, शब्द अलंकार और प्रयुक्त शब्दों के विचलन, चयन, समानांतरता आदि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ग रूप शैली विज्ञान। इसके अंतर्गत रूप विचलन, रूप चयन, रूप समानांतरता आदि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। घ वाक्य शैली विज्ञान। इसके अंतर्गत विविध प्रकार के वाक्यों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि में प्राप्त विचलन, चयन, समानांतरता आदि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अंग अर्थ शैली विज्ञान। इसके अंतर्गत अर्थ विचलन, अर्थ चयन, अर्थ समानांतरता के साथ साथ अर्थालंकारों में प्राप्त विचलन, चयन एवं समानांतरता का वैज्ञानिक अनुशीलन किया जाता है। शैली विज्ञान के अनुशीलन की प्रायोगिक पद्धति। शैली विज्ञान के अंतर्गत जहाँ किसी कवि या लेखक अथवा किसी कृति का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वहाँ भाषा की प्रकृति एवं संरचना के इकाइयों में प्राप्त विचलन, चयन और समानांतरता का विशेष रूप में अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टि से शैली विज्ञान के अनुशीलन को निम्नलिखित शीर्षकों में विभक्त कर सकते हैं। पहला ध्वनि, क ध्वनि विचलन, ख ध्वनि चयन, ग ध्वनि समानांतरता। दूसरा शब्द, यानी शब्द विचलन, शब्द चयन, शब्द समानांतरता। तीसरा रूप, रूप विचलन, रूप चयन, रूप समानांतरता। चौथा वाक्य, वाक्य विचलन, वाक्य चयन, वाक्य समानांतरता। पांचवा अर्थ, अर्थ विचलन, अर्थ चयन, अर्थ समानांतरता। शैली विज्ञान में ध्वनि। शैली विज्ञान के आधार पर जब किसी कृति या कृतिकार की भाषा का अनुशीलन किया जाता है तब सर्वप्रथम ध्वनि का विश्लेषण एवं विवेचन किया जाता है। प्रायः कवि या लेखक कभी तो परंपरा से प्राप्त ध्वनि में कुछ परिवर्तन करके एक नए ढंग से ध्वनि का रूपांतर किया करते हैं, जिससे उनकी रचना में नवीनता के साथ साथ अधिक चारुता एवं सरसता आ जाती है। कभी वे ऐसी ध्वनियों का चयन किया करते हैं जो उनके भाव एवं विचारों के उद्घाटन में अधिक सहायक होती है तथा जिनके फलस्वरूप भावों एवं विचारों का बिंबात्मक शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। इसके साथ ही कभी कभी वे ध्वनियों का समानांतर प्रयोग करके अपनी रचना को अधिकाधिक रोचक, मार्मिक एवं आकर्षक बनाया करते हैं। इस प्रकार शैली विज्ञान की दृष्टि से ध्वनि के अध्ययन की 3 दिशाएं स्पष्ट ज्ञात होती हैं। क ध्वनि विचलन, ख ध्वनि चयन, ग ध्वनि समानांतरता।